इसके बाद अगली आयत बहुत ही खूबसूरत है, 132-133। अहले ईमान के लिए कुछ कीमती हिदायत हैं, क्या? वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। अब देखिए लफ्ज़ इताअत कितना आम है ना, मतलब क्या है? तौअन, तोए, वाओ, ऐन। तो कहते हैं खुशी को, यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात खुशी खुशी मानो, रोते धोते नहीं, मजबूर होके नहीं, अच्छा अब क्या करें, अब तो नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, हाय पर्दा तो करना पड़ेगा, हाय अब ये नहीं खा सकते, वो नहीं पहन सकते, नहीं। अतीउल्लाह, आप देखिए कि आपके अपने बच्चे आपकी बात माने भी और साथ बुड़बुड़ाएं। आप कहते बेटा पानी का ग्लास ला दे, तो पहले तो उठे ही ना, और जब उठे तो पाँव पटकते हुए और लाकर ग्लास जोर से रखें, पानी भी गिर जाए, आपको अच्छा लगेगा। हम क्या चाहते हैं? हमारी मासियाँ, हमारे मेड, हमारी बीवियाँ, इवन हम अपने शोहरों से क्या चाहते हैं कि जो भी काम करें वो खुशी खुशी करें, तो अल्लाह भी यही चाहता है। और दूसरी बात देखिए, वसारियु इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ दौड़ो। मोमिन की जो भाग दौड़ है, जो मुसाबकत है ना, वो पैसा कमाने से ज़्यादा, फैशन परेड में आने से ज़्यादा किस पे होनी चाहिए? नेकियों में। और सहाबे किराम ऐसे थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर में हमेशा नेकियों पे तकाबुल होता था। तो जब नेक अमाल में सबकत करने की कोशिश की जाएगी, तो मान लीजिए कि आपके दिल में तकवा है। यहाँ एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, दुनिया में अगर किसी के पास बड़ी वाजबी सी मनी होती है, तो आप देखते हैं कि उसका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल सा होता है ना। घर में हो सकता है सोफे भी ना हो, एक आध कुर्सी आ जाएगी, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब प्रमोशंस होने लगती हैं, जब ज़रा सा हाथ खुलता है, तो फिर आप कहते हैं अब सोफ़ा भी ले लो, अब कारपेट भी ले लो, अब कुछ और पर्दे भी लगवा लो। क्या पता चला, दुनिया की दौलत बढ़ती है ना, तो लाइफस्टाइल रेज होता है। आप अच्छी से अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, बस इसको लीजिए। जो काम दौलत के बढ़ने के साथ जाहिरी दुनिया में हो रहा है ना, वही काम आपके तकवा के बढ़ने के साथ नेकियों में होगा। थोड़े तकवे के साथ हम छोटे छोटे कामों पे बड़ा खुश हो रहे होते हैं, शुक्र है मैं ये तो कर रही हूँ, अच्छा उससे तो अच्छी हूँ, लेकिन जितना तकवा बढ़ता है, फिर आप कहते हैं पांच नमाज है ये तो सभी पढ़ते हैं, मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए, अच्छा फर्ज ये तो सब पढ़ते हैं, मुझे सुन्नतें भी अदा करनी है, अच्छा ये नेकी तो बड़ी कॉमन नेकी है, मैं खास नेकी करूं। और आप नोट करते हैं कि सहाबा कराम के दौर में लोगों की नजर नेकियों पे इसीलिए होती थी कि वो तकवा को, नेकी को दौलत, डॉलर, पाउंड, क्रोन्स इससे भी बड़ी चीज समझते थे। अब जब सवाल पैदा होता है कि मुत्तकी हमेशा नेकियों को पाता है, तो अगला सवाल यह है कि मुत्तकी फिर कौन होते हैं? अल्लाह ने आयत 134-136 में बड़ी खूबसूरत एक लिस्ट दे दी, जो आप और मैं अपने फ्यूचर में अमल के लिए भी नोट कर सकते हैं। अल्लज़ीन युनफिकून फिस्सराई वद्दर्रा, लिस्ट आउट कर लीजिए, तंगी और तुर्शी दोनों में, खुशी और गमी, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं या कम, खर्च करते हैं। ये नहीं है कि जब पैसे कम हुए तो जो दीन पे खर्च हो रहा था वही निकाल दिया। फिर दूसरी बात देखिए, वल काज़िमीन अलगैज़, गुस्से को पीने वाले, एक जुमला नोट कर लीजिए, गुस्से का ना आना कमाल नहीं है, बल्कि इसे काबू में रखना कमाल है। जैसे कहते हैं कि एक शिकारी जानवर है, तो उसको टेम किया जाता है ना, सुधारा जाता है, फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। गुस्से का ना आना कोई खूबी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने गुस्सा इसलिए रखा कि अल्लाह की नाफरमानी के कामों को देखकर हमें गुस्सा आए। लेकिन गुस्से का इजहार कैसे करना है, इसके ऊपर एक पूरी एंगर मैनेजमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको एक से ज़ायद दफ़ा किया हुआ है, आप वेबसाइट के ऑडियोज़ में जाकर एंगर मैनेजमेंट का टॉपिक चेक करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ मिलेगी। अपना गुस्सा कैसे कम करें, बच्चों का गुस्सा कैसे कम करें, शौहर का गुस्सा कैसे कम करें, और सो ऑन, इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि आज हमारा एक बहुत बड़ा मसला गुस्सा भी है, बात बात पे गुस्से पे। फिर अगली अलामत मुत्तकी की, वला आफीन अनिन नास, लोगों से दरगुजर करने वाले, इग्नोर ग्रेसफुली, फॉरगिव फॉरगेट। मुत्तकीन का अफ्व दरगुजर सब के लिए होता है, यानी मोमिन दिल में बात नहीं रखता, छोटी छोटी बातों पे दूसरों से उलझने नहीं लगता, और साथ ही फरमा दिया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह को मुहसिन अच्छे लगते हैं, यानी एहसान करने से इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। पहले गुस्से को काबू करेगा, फिर दरगुजर करेगा, फिर एहसान करेगा। एक लौंडी थी किसी मालिक की, तो उससे कुछ गलती हो गई, करीब था कि मालिक उसको गुस्से में डांटता, तो उसने यही आयत पढ़ दी। उन्होंने कहा जा तुझे छोड़ा, तो फिर उसके बाद होते होते उसको आज़ादी कर दिया। तो एहसान करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला आप पे मेरे पे एहसान करे। फिर अगली अलामत देखिए, वल्लज़ीन इज़ा फ़ालू फ़ाहिशा, और जब इनसे कोई फुहश काम हो जाता है, नशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर लें, तो फ़ौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। क्या पता चला, मुत्तकी से भी गुनाह हो सकता है। देखिए बाहर जाएंगे पाँव पे मट्टी पड़ेगी, पानी के पास से गुजरेंगे छींटे पड़ेंगे, केले के छिलके पे पाँव फिसला, लेकिन अब फिसलते तो नहीं जाएंगे। तो मुत्तकी कौन है कि जो बहुत कॉन्शियस होता है कि मैं गलत काम ना करूं, लेकिन अगर कभी हो जाए तो फौरन तौबा करता है। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम के लफ्ज़ हैं, तौबा के बाद फिर गुनाह ना करें। ये नहीं कि तौबा और गुनाह का एक खेल बना ले, और आहिस्ता 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 जब आगे बढ़ता जाएगा इंसान, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके दिल में और ज़्यादा मोहब्बत नेकियों की डालता है। तो लिहाजा खुद को और अपने डिपेंडेंट्स को बड़े साइकोलॉजिकल वे में डील किया करें। हम बहुत दफ़ा दीन की बात करने में बहुत स्टबन हो जाते हैं, और कई दफ़ा तो हम लोगों को ज़बरदस्ती फिर फोर्स करते हैं कि वो गुनाह करें। तो अल्लाह से भी ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला तू हमें हिदायत अता फरमा हर मामले में। हिदायत के हसूल के दो ज़राए की बात है, आयत नंबर 137-138 में हसूल हिदायत के दो ज़राए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना हमें हिदायत मिले, तो कहाँ से मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, कद खलत मिन कबलिहकुम सुननुन फसीरु फिल अर्द, कायनात में घूमने फिरने से दूसरे लोगों के हालात से इंसान हिदायत लेता है। तो पहली चीज़ हिदायत की इबरत लेता है बंदा तारीख से। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। अगर माँ ने कोई काम किया, अगर बेटी भी बाद में वही करेगी तो वही नतीजे होंगे। बाप ने अपने दौर में कोई गलती की तो बेटा भी करेगा तो वही होगा। तो हमें हमेशा अपने बड़ों से सीखना चाहिए, और हम मुसलमानों के पास तो हमारी हिस्ट्री ही बहुत है जिससे हम हिदायत लें कि कैसे मुसलमानों को रूज मिला, कैसे जवाल मिला। और दूसरी चीज़ आयाते कुरानी से फैज़, यानी आप कुरान पढ़ते जाइए, हुदा लिल मुत्तकीन, कुरान खुद कहता है आपको हिदायत मिलेगी, और साथ ही साथ दूसरे लोगों से सबक हासिल कीजिए। और साथ ही फसीरु फिल अर्द कहकर अल्लाह ने इस बात की भी दावत दी कि मुसलमान सिर्फ एक बंद कमरे में नहीं बैठ जाता, वो दुनिया में घूमता है, फिरता है, देखता है, लोगों से इंटरेक्शन करता है, लोगों के साथ उसका बड़ा प्यारा सा ताल्लुक होता है, और वो चलते फिरते लोगों को देख भी रहा होता है और उनसे चीज़ों को सीख भी रहा होता है। फिर उसके बाद देखिए कि हाज़ा बयानु लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिल्मुत्तकीन में क्या पता चला कि आम लोगों के लिए तो कुरान बस एक बयान है, बातें हैं। आज आपको तो मुस्लिम्स के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान से फ़ायदा किसको मिलेगा, खैर किसको मिलेगी, जिसके अंदर तकवा होगा। डे वन से लफ्ज़ तकवा हमारे साथ है। हम सूरत फातिहा में दुआ करके निकलते हैं, और सूरत बकरा में अल्लाह ने हुदा लिल मुत्तकीन की बात करके यहाँ भी बता दिया कि अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, मुत्तकी कौन है, पहले दिन का सबक याद कीजिए, कि जिसके अंदर अपने आपको बदलने की ख्वाहिश शुरू हो जाए, जिसको अपने गुनाह चुभने लगे, तो उसके लिए आपको मुस्तकिल कुरान से ताल्लुक़ रखना होगा। फिर आयत 139 में वन तुम लाउना इन कुन तुम मोमिनीन की बात करके क्या बताया, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। आज हम दुनिया में जब मुसलमानों को दबा हुआ देखते हैं, पिसा हुआ देखते हैं, तो हम कहते हैं जी इसलिए कि हमारे पास हथियार नहीं है, इसलिए कि हमारे पास शरह ख्वानदगी बहुत कम है, लिटरेसी रेट कम है। लेकिन असल चीज़ जो कुरान ने दी है, मोमिन के पास हथियार नहीं, तीर तलवार नहीं, ईमान का हथियार, तकवा का हथियार जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो कामयाब होगा। फिर उसके बाद आयत 139 से क्या पता चलता है कि मुसलमानों का उरूज ईमान से मशरूत है। जब मुसलमानों का ईमान बड़ा आला था तो अल्लाह की तरफ से मदद थी, लोग थोड़े होते थे बाकी काम फरिश्तों के ज़रिए करवा दिया जाता था, हथियार कम होते थे अल्लाह ताला लकड़ी की छोटी छोटी कह लीजिए कि प्लेट्स को तलवारों में बदल देता था। लेकिन आज के तौर पे हमारे पास ईमान कम है, इसलिए हमारे पास अल्लाह की मदद नहीं। तो गलबा इस्लाम में नज़रियाती और अमली तौर पर ईमान की पुख्तगी को बहुत अहमियत हासिल है। आज आपको मुझे फिर अपने बच्चों और अपने अंदर क्या चीज़ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? ईमान को बढ़ाने की करनी है। उसके बाद आयत 140 से 143 में दोबारा गज़वे उहद के कुछ मनाजिर पेश किए जाते हैं और मैसेज क्या है? कहले ईमान हिम्मत ना हारे, क्योंकि यमसस्कुम करहुन फ़कद मस्सल कौम करहुम मिस्लुहु। गज़वे बदर में कुफार के 70 लोग मारे गए थे और 70 कैदी बने थे, जबकि उहद में मुसलमानों के 70 लोग शहीद हुए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तसल्ली देकर जो पैगाम दिया है वो क्या है कि ज़ाहरी फतह और शिकस्त अल्लाह ताला के कायनात में बनाए हुए कवानीन के मुताबिक है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर जगह मुसलमान ज़ाहरी तौर पे भी कामयाब हो। आप देखिए कि जो अल्लाह के रास्ते में निकल गया ना वो कामयाब है। आपने एक अच्छे प्रोग्राम का अरेंज किया, आपने जगह का एहतमाम किया, आपने लोगों को दावत दी, अब लोग आ जाएं या लोग ना आएं, आप कामयाब हैं, ये मुराद है। हज़रत नूह ने 950 साल तबलीग की लेकिन बहुत थोड़े लोग दीन पे आए, तो क्या वो नाकाम हुए? मतलब यह है कि मुसलमान फतह को या कामयाबियों को और सक्सेस को देखकर दीन के काम नहीं करता, वो तो बस इसलिए करता है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाना है। फिर दूसरी बात इसमें एक जो समझ आती है कि ज़ाहरी शिकस्त से बददिल होना ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। नहीं, अब तो मैं कभी कुछ करूँगी नहीं, मेरा तो सारा काम ही ख़राब हो गया। आप जब कोई भी नेकी का काम करें ना, नतायज को छोड़ दें, अपनी सी पूरी कोशिश करें, सारे असबाब इस्तेमाल करें। मेरी वजह से तो नहीं कोई कमी रह गई, मैं तो नहीं किसी तक पैगाम नहीं पहुंचा सकी। उसके बाद जब सब कर दें तो आराम से बैठ दें। अल्लाह ने इसमें बड़ा प्यारा पैगाम दिया, वह तिलकल अय्यामुन उदाविलुहा बैनन्नास। क्या हुआ अगर बदर में तुम्हें फतह हुई और उहद में अगर फतह ना हो सकी? तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो दिनों को उलटता और पलटता है। मतलब यह है कि मुसलमान कामयाबियाँ देख कर नहीं जमता, वो हक के लिए आता है और हक दे के जमता है। और इसी तरह से एक और चीज़ भी इस पूरे गज़वे उहद के सिनेरियो में हमें समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी, यानी अपने आप को उनकी ज़ात से इतना जोड़ लेना कि अगर खुदा न खास्ता नबी साथ छोड़ भी जाएं तो तुम इस्लाम छोड़ दोगे? नहीं, इसकी बजाय मिशन से मोहब्बत रखो। गज़वे उहद में हज़रत मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, तो खबर फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, तो उससे कुछ लोगों के हौसले टूट गए। तो उस पे ये आयत उतरी थी, वमा मुहम्मदिन इल्ला रसूल। मोहम्मद तो क्या थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अल्लाह के रसूल हैं और इनसे पहले भी बहुत से रसूल हो चुके। क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाए? अब देखिए दोनों लफ्ज़ कुरान में लिखे हुए हैं, अफाइम माता ओ कुतिला। आज कुछ लोग कहते हैं नबी के नाम के साथ उनकी वफ़ात का तذکرہ करना उनकी बेइज्जती है, हालांकि कुरान आपके सामने है। जिस काम में एक इंसान का अपना दखल नहीं है उसमें इज्जत और बेइज्जती वाली तो बात ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ क्या बताया कि क्या अगर नबी ना रहे तो तुम इस्लाम से निकल जाओगे, तुम एड़ियों के बल चले जाओगे। ऐसे ही जैसे आज कोई लीडर ना रहे तो आप आज़ाद हो जाएंगे, उस्ताद ना रहे तो शागिर्द इल्म नहीं लेंगे, माँ बाप ना रहे तो क्या बच्चे दीन छोड़ देंगे? असल नेकी का काम वो होता है जो खुद आप अपने दिल से करते हैं, और जो जितना इस काम पे अल्लाह का शुक्र करेगा अल्लाह उससे उतना ये काम लेगा, क्योंकि वसयजिल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह कदरदानों को शुक्रगुजारों को नेकियाँ ज़्यादा देता है। फिर इसके बाद 145 से मैसेज क्या मिला कि मौत का वक्त तयशुदा है। कुछ लोग मैदान जंग में इसलिए नहीं जाते कि हम मारे ना जाएं। अल्लाह कहते हैं वमा कान अली नफ्स अंतमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी बंदे के हाथ में ही नहीं है कि अपनी मर्जी से मर जाए। फिर तो बसों में ना लोग बैठे क्योंकि हादसे होते हैं, फिर जहाज़ में ना बैठे कि जहाज़ गिर जाते हैं। तो जंग से फरार करने से मौत नहीं टलती, इससे ये मुराद है मौत जहाँ आनी है वो आके रहेगी, उसका वक्त मुकर्रर है। फिर आयत 146 से 148 में अल्लाह ने पैगाम दिया कि अल्लाह वाले इसकी राह में जंग करते रहे, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जान रहे या बचे। पिछले अंबिया की बात करके उनके साथियों का यहाँ तज़किरा है, वकाई में नबी इनकातल माहौरबिजून, यानी नबियों ने अल्लाह के रास्ते में जब लोगों को पुकारा तो अल्लाह ने उनको चुने हुए लोग दे दिए। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। सहाबा कराम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे ना, पिछले नबियों को भी अल्लाह ने बड़े प्यारे साथी दिए, और आज भी लिख लीजिए क़यामत तक के लिए, जो बंदा इखलास के साथ सही तरीके से दुरुस्त मेथडोलॉजीज़ को इख्तियार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक दीन का काम करेगा, अल्लाह उसको मुखलिसीन दे देगा। लोगों में बहुत खैर होती है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या करें ये सबको नहीं पता होता। कि लीडरशिप क्वालिटीज़ कम लोगों में होती हैं लेकिन फॉलोअर्स वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नीयत को ठीक रखिए। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बता दिया कि कुफार का मिशन मुसलमानों को ईमान की दौलत से महरूम करना है। तुमने क्या करना है? काफिर को नहीं, कुफर को ख़त्म करना है। एक जुमला लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि इस्लाम की दुश्मनी काफिर से नहीं है, कुफर से है। जब कुफर ख़त्म हो जाता है तो वही शख्स आपका मुसलमान भाई बन जाता है, बहन बन जाता है। फिर आगे 149 से 151 में आपको एक और पैगाम क्या मिलता है, या अय्युल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू, ऐ ईमान वालों अगर तुम कुफार की बातें मानोगे तो ये तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे और बिल्कुल ही खसारा पाने वाले बन जाओगे। बल्कि क्या है, बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन, अल्लाह तुम्हारा मौला है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। और अल्लाह ने इस आयत में ये भी बता दिया कि कुफार के दिल में सच्चे मोमिनों का रोब अल्लाह डाल देता है, क्योंकि मुशरिक जो होता है ना ये बहुत बुज़दिल होता है। जो अल्लाह से डरेगा ना वो बहुत बहादुर होगा। तो क्या पता चला कि ईमान बिल्ला तक़वियत कल्ब का बायस है। आसान लफ्ज़ों में बोल दूँ, जितना आपका ईमान ज़्यादा होगा ना आपका दिल उतना मजबूत होगा। आप छोटी सी छोटी बात पे हिम्मत नहीं हारेंगे। फिर एक और चीज़ जो पता चलती है आगे 152 में, वो क्या है कि नाफरमानी का नतीजा नाकामी है। ग़ज़वे उहद में डिसिप्लिन को ख़राब किया गया, थोड़ी देर के लिए हुआ तो फतह शिकस्त में बदल गई। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम ऑर्गेनाइज रिलीजन है। इस्लाम में हमेशा डिसिप्लिन को कायम रखने की दावत दी जाती है। फिर इसी तरह 153 में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें मैंने एक तकलीफ़ पे दूसरी पहुँचाई, क्योंकि उहद की जंग में इतना कुछ इकट्ठा हुआ, मसलन नबी सल्लम ज़ख्मी हो गए, फिर वो जीती हुई फतह शिकस्त में बदलने लग गई, तो फील हुआ के मुसलमान डिप्रेस हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे पास तो ये भी नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मेरे ऐसे क्यों हो ना। तो ऐसे वक्तों में बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है इन आयात का कि गम ना करो, ठीक है तकलीफ आ गई तो रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। शायद इसी आयत पे ये शेर है कि जब एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आती है तो पहली आसान हो जाती है। हमारे लिए सीखने की बातें क्या हैं कि लीडरशिप यानी क़्यादत पे अदम एतमाद और नाफरमानी कौम को शिकस्त दोचार करती है। यानी नबी सल्लम पर सहाबा का ईमान बहुत था, आप उनकी बात पे ट्रस्ट बहुत करते थे इसलिए कामयाब थे, और उसका उलट जो है वो शिकस्त का होगा जिसको अपने लीडर पर यकीन नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में कि जो औलाद अपने माँ बाप पर एतबार नहीं करती, जो शागिर्द अपने उस्ताद पे यकीन नहीं करता, बताइए कि उसको फिर फतह कैसे मिल सकती है। फिर दूसरी बात यह है कि गम पर गम इसलिए दिया गया ताकि मुसलमानों के अंदर बर्दाश्त की कुव्वत पैदा हो, अज़्म और हौसलों। कोई माँ नहीं चाहती उसका बच्चा गिरे, लेकिन आप देखते हैं कि बच्चे गिरते भी हैं, उनको चोटें भी लगती हैं, इससे क्या होता है उनके जिस्म मजबूत हो जाते हैं। फिर जब ये कुव्वत और हौसला पैदा हो जाता है तो इंसान को फिर वो जो चीज़ उससे गुम हो जाती है ना उसके जाने का गम नहीं रहता, और वो कहता है कोई बात नहीं, आज चली गई चीज़ तो कल वापस आएगी। फिर इसी तरह 154 से क्या पता चलता है, मौत का वक्त ही नहीं जगह भी मुकर्रर है। घरों में भी जो लोग बैठे रहते तो भी मौत आनी थी। कमज़ोर ईमान के जो लोग होते हैं ना, ज़ईफ़ुल ईमान लोग, वो ज़ाहरी शिकस्त की वजह से दीन पे शक करते हैं कि अच्छा जी अगर ये सच्चे होते तो ये क्यों होता, अगर ये दीन सच्चा था तो फिर ये आज ऐसा क्यों है। और ज़ाहरी फतह मिल जाए तो कहते हैं हाँ हाँ ये सच्चे लोग हैं। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं, मुश्किल वक्त में हर बंदे का जौहर खुलता है या उसका ज़मीर फाश हो जाता है। आज भी आप देखिए कि ज़िंदगी के अंदर अपना कोई ऐसा मामला याद कीजिए जब आप किसी मुश्किल में पड़े, दोस्त दुश्मन का फ़र्क पता लग गया, अपने बेगाने का फ़र्क पता चल जाता है। और इसी तरह से 155 से क्या पता चलता है, बुज़दिली गुनाहों की वजह से पैदा होती है। अल्लाह हमें बुज़दिली से बचाए और गुनाहों से बचाए।